अरेका वाले जालिम थे, तो देख लो कि हमने इनसे भी इंतकाम लिया। इन दोनों कौमों के उजड़े भी इलाके खुले रास्ते पर वाके हैं। हिजर के लोग भी रसूलों की तकजीब करते रहे, हमने अपनी आयात इनके पास भेजी, अपनी निशानियां इनको दिखाई, मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे। इसको हाईलाइट कीजिए। जो कौमें अल्लाह की उतारी हुई आयात को इग्नोर करें, निशानियों को ना देखें, कुरान की आयतों को ना देखें, फिर उनका हाल यही होगा। वकान यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने इनको सुबह होते ही आ लिया और उनकी कमाई इनके कुछ काम ना आई। कौम हिजर जो ये बड़े बड़े घर बनाती थी, इस कौम की उम्र 100 100, 200 200, 300 300 साल थी। तो जब मट्टी चूने के घर बनाते थे तो वो इनकी जिंदगी में गिरने लग जाते थे। जब वो घर गिर जाते तो कहते, ओ हो, हमारी जिंदगी में गिर गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को इतनी ताकत दी कि इनके नाखून सख्त थे पीतल की तरह, और उनसे ऐसे करके जैसे वो कार्विंग की जाती है, तो अपने घर जो है पहाड़ों में बनाते थे, जिसमें भी ये 200 300 साल तक रहते थे। तो अल्लाह ने कहा कि जब उनकी पकड़ का वक्त आया तो ये घर पड़े रहे। आज भी इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। एक प्रेजेंटेशन अगर हुआ तो आपको आज इंशाल्लाह भेज देंगे कि जिसमें कौम हिजर के घर देखिए। आज वो बस्तियां पड़ी हुई हैं लेकिन लोग नहीं हैं, इसलिए कि जब लोग अपने घरों में अल्लाह से बेखौफ होकर जीते हैं तो अल्लाह ताला उनको वहां से खत्म कर देता है। फिर अल्लाह ताला और आपको और मुझे सबको इस दुनिया में भेजने का मकसद सिखाते हैं। वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, हमने जमीन और आसमान और इनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया, और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। ये है पर्पज ऑफ लाइफ। हम इस दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किए गए। क्या बस इंतजार करो? बस है नबी, आप इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना तरीके से दरगुजर से काम लें। यकीनन आपका रब सबका खालिक है, वो सब कुछ जानता है। क्या पता चला, ये बहुत ही प्यारा लफ्ज है, फसफहिस्सफल जमील, ऐसा खूबसूरत दरगुजर कीजिए जैसे कि करने का हक है। देखिए, जो लोग जिंदगी को बेमकसद समझते हैं वो आपकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, तो उनके मुंह ना लगे। यहाँ अल्लाह ने मैसेज दे दिया, तरीके से बात करें, जो आज है उनके साथ नरमी करें, इनकी बेअमली को इग्नोर कर दें, इनको सहारा दें। देखिए, जब कोई शख्स भी नया नया दीन पे आता है ना, वो टूटा हुआ आता है, वो बहुत सारी मुखालफत सह के आता है। अब अगर आगे से दाई दीन उनको सख्तियां करे, उन पर डांट करे और उनको छोटी छोटी बातों पर घूरे, तो फिर उनके दिल और टूटेंगे। बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरी तरफ आना। तो आज जो लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें तो इतनी मसरूफियात है, इतनी अट्रैक्शन है। हम तो रमजान में ईद की तैयारियां करते रहते थे, इस साल तो हमें आखिरत की तैयारियां करने को पड़ गई। तो सिखा दिया कि आप इनके साथ नरम बात करें, अच्छे तरीके से करें। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और वो सब कुछ जानता है, और बाकी रह गई दुनिया की चीजें तो उस पर क्या नजर डालनी। हमने तो आपको 7 ऐसी आयात दे दी जो बार बार दोहराई जाने के लायक है। ये कौन सी है? सूरह फातिहा। तो ये सूरह फातिहा का एक नाम आगे, इसको हाईलाइट कर लीजिए, सब अम मिनल मसानी। सब अरबी में 7 को कहते हैं, मसानी कहते हैं दोहराई जाने लिए, रिपीटेड वर्सेस, क्योंकि में हर नमाज में लाजिम है, इसके बगैर नमाज होती नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बार बार आपको पढ़ने वाली इतनी प्यारी आयतें दी। बल कुरान अल अजीम, इस आयत से मुफसरीन कहते हैं कि सूरत फातिहा कुरान से अलग है। ये तो इसकी अहमियत की खातिर इसको शुरू में डाल दिया जाता है, वरना आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी को क्या मिला? कुरान मिला और साथ ही साथ सूरह फातिहा मिली। सूरह फातिहा ऐसी जैसे एक छोटा सा सहीफा, एक बुकलेट मिल जाता है। तो अल्लाह के नबी को कहा, जब आपको कुरान दे दिया, मुझे और आपको भी ये कहा जा रहा है, आप दुनिया की चीजों की तरफ क्यों नजरें उठाएं? आपको तो अल्लाह ने इतना प्यारा कुरान दे दिया है। ला तमुद्दन आई नहीं कहला मामत नबी अस्वाजा मिनहुम, तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख भी उठा कर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, ना इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको, ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ आगाह करने वाला हूं। ये इसी तरह की तंबी है जैसी हमने इन तफरका परदाजों यानी फिरके डालने वालों की तरफ भेजी थी, जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर लिया। यहाँ कुरान से मुराद तौरात है, तो रात के लिए भी कुरान का लफ्ज आया है। पर मैं तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। इसमें चंद बातें बहुत ही खूबसूरत है जिसकी जरूरत है बात करने की। पहली बात आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना तआला ने यहाँ ये बात कह दी कि जो लोग आपकी तरफ आ जाते हैं दीन सीखने, आप उनके साथ अच्छी बात करें, और जो शौक नहीं रखते, जिनकी दुनिया की तरफ तवज्जो है, आप उनकी तरफ मत देखें। लोगों के बड़े बड़े घर देख के आपकी आंखें ना लंबी हो जाए। मद्दा क्या कहते हैं, खींचना, अरबी जुबान में लफ्ज भी है ना, हरूफ मद्दा, जिनको लंबा खींचते हैं। तो अब लंबा के किसी का घर देखा तो यूं देखते गए, कोई गाड़ी गुजरी तो हाय लंबी है, हाईलैंड क्रूजर, भी सांस तो ले लें आप, क्या फर्क पड़ेगा, आखिर तो मैयत गाड़ी में ही जाना है, कोई हमें हमारी मनपसंद गाड़ी में नहीं छोड़ेगा। दुनिया की तरफ वो देखे जिनके पास कुरान नहीं है। ये आयते हैं जो दिल करता है कि फिर सब कुछ ले लो लेकिन मेरा कुरान न लेना। हकीकत है हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, सूरह यूनुस में पढ़ चुके हैं ना, आयत 57-58 में ये ऊपर लिखा हुआ है, क्या लोगों तुम्हें हमने वो किताब दे दी जिसमें इतनी खूबी है, हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, तो आप अब खुश हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई कॉम्प्लेक्स था आज तक, हाय मेरी बहन का घर बड़ा मेरा छोटा, डोंट वरी, अल्लाह आपका दुनिया में भी बड़ा बना देगा और ना हुआ तो आखिरत में तो मिल ही जाएगा आपको। तो जिसको दीन की दौलत मिल जाए उसको दुनिया की दौलत नहीं करनी। दूसरों की चीजें देखें, खुश हों, उनको दुआ दें, उनके लिए उसमें बरकत की बात करें, उनसे कहें कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, दैट्स इट। ना रीझे ना पूछें कितने की ली, कहाँ से ली, हाय कितनी खुशकिस्मत है। और एक छोटी सी नसीहत आपको कर दूं, उम्मते वसत को आज इस नसीहत की जरूरत है, कहीं आपको शक भी पड़ जाए ना कि किसी ने अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई चीज ली है, पूछे नहीं कैसे ली है, क्या किया है, लोग खुद ही बता देते हैं, हालात ही वाजे होते हैं, कभी उसको मुबारक ना दें, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी की चीज में कभी बरकत नहीं होती, कभी खुशी नहीं होगी। जब हम ऐसी चीजों पे बढ़ चढ़ के पूछते हैं कैसा है, या जब खबरें फैलती हैं ऐसा घर ऐसे कपड़े ऐसी शादी, अब अगर कारोबार में कुछ खराबी थी या लेन देन में मसला, तो कहते देखा तारीफें कितनी हुई। दूसरी तरफ आप देखिए कि कोई अपने ऊपर इतना बोझ डाल के अल्लाह को नाराज करके कुछ लेता है, किसी ने नोटिस भी नहीं लिया, इट्स फाइन दैट्स इट, तो कहेगा कि मैंने क्या किया, आपको बहुत अच्छा सूट पहन कर आए, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, अगर आप लोगों के लिए पहन के निकले हैं तो आपका दिल टूटेगा, सच्ची जो बात है, किसी को पसंद नहीं आया, फिर खुद ही बताएं कैसा लग रहा है, कुछ कहा नहीं आपने, क्या हुआ। और अगर आप अपने लिए पहनते हैं, आपका अपना दिल बता रहा है आपको अच्छा के बुरा, आप तो चाहते ही नहीं कि कोई आपको अच्छा या बुरा कहे, ठीक है। तो दुनिया की चीजों पे बहुत नजरें ना रखें, वक्फ़ जनाह का, अपने कंधों को झुका दो। और अगर आप देखें तो अगली सूरतों में अब यही चीज माँ बाप के सामने बैठने के लिए आ रही है कि अपने माँ बाप के आगे कंधे झुकाओ, तो कहा कि लेट डाउन ना करें उन लोगों को जो आपके पास आए। बस दफा लोग दीन की तरफ आने वालों को झिड़कते बहुत है, क्योंकि वो एक खास दुनिया छोड़ के आए होते हैं, अब लोग उनके ऊपर पीछे हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो ऐसे हैं वो हैं, कहा नहीं, जो संजीदा नहीं है आप उनको मत देखें, जो संजीदा है उनको देखें, अभी ये नए नए लोग हैं, अभी कितनी मुश्किलों से निकले हैं। जब इंसान कोई भी काम नया नया शुरू करता है मुश्किल लगता है, तो अभी तो इन्होंने किया कि अभी पढ़ा कितना, अभी जो जुमा जुमा 8 दिन तो इनको आते हुए हुए, अभी तो आगे बहुत लंबा सफर बाकी हुआ है, तो लिहाजा आप इनको देखें। अबू जहल जैसे दौलतमंदों के हाल पर कुड़ना छोड़ दें, वरना आपका दिल टूट जाएगा, तो आप दूसरों की हिफाजत कैसे करें। तो जो आए हुए उनकी तरबियत करें, उनका तज़किया करें, उनको अच्छे तरीके से लें, तो बात फायदे की होगी। और हकीकत है कि जब आपका सफर दीन की तरफ शुरू हो तो हर कदम फूक फूक के उठाएं और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरे कदमों को हिदायत पर आने के बाद पीछे न पलटाना। देखिए आप इमेजिन करिए कि एक स्लोप है, इस तरह फील करें आप, स्लोप पे चढ़ने वाला चढ़ता रहेगा तो चढ़ जाएगा ऊपर, अगर किसी मुकाम पे खड़ा होना चाहे तो दो में से एक ही बात होगी कि या तो नीचे गिर जाएगा या लुढ़क जाएगा, गिरेगा खड़ा नहीं रह सकता। स्लोप पे इंसान को फिर भाग के चढ़ना पड़ता है। आपका मेरा जिंदगी का सफर अब शुरू हो गया, अब तो एक ही रास्ता है, भागते रहे भागते रहे। इस रमजान को आप इस तरह इमेजिनेशन में लाएं, मैं और आप भाग रहे हैं, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, रोज इतना सुन रहे हैं, अभी तो हमें इसकी कदर नहीं है, ये तो एक वो एनर्जी टॉनिक की तरह सुन रहे हैं ना। ईद के दिन आप सब अपनी फीलिंग्स लिखिएगा, लिख लें इसी पे अपना होमवर्क। अगर ईद के दिन कुरान नहीं, और ईद के दिन मैं बुलाऊंगी भी तो आप कोई नहीं आएंगे, पूछेगा भी कोई नहीं आप कौन और हम कौन, काम खत्म हुआ है, लोग पहले ही पूछना शुरू हो जाते हैं आप कब जा रही हैं, खैर से आपके तो नहीं जहन में सवाल। लेकिन ऐसी क्रेविंग होती है उस दिन, रोना ही आई जाता है, रोना ही आई जाता है ईद वाले दिन। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि पूरे साल में सिर्फ ईद का एक दिन हो सकता है जिस दिन बाज़ाब्ता तौर पे क्लास नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ा दे एडमिन्स को, मैंने देखा ईद वाले दिन भी ये रूम खोलते हैं, पिछले सालों में से किसी एक दिन की बात ज्यादा है। वैसे भी जब परदेश में हो तो कह कहते ना कि ईद तो अपनों के साथ ही होती है, तो दीन वाले अपने ही होते हैं लेकिन वो सारे उस दिन अपनों में मसरूफ हो जाते हैं। तो मैं ऐसी घर में थी तो मैंने कंप्यूटर खोल लिया, तो पैल्टो खोला ना तो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा रूम खुला हुआ था। इतनी मुझे मोहब्बत आई, मैंने देखा ये है कौन सी एडमिन, तो वो थी मुझे खुशी। फिर मैंने उनको थोड़ी देर में कहा कि मैं माइक ले सकती हूँ, तो मैंने अपने ऑनलाइन लिसनर्स के साथ बातें शुरू की, मतलब मैसेज के पूरा घंटा सवा का लेक्चर हो गया। इतना मैंने इंजॉय किया, मैंने कहा असल में मैं रह नहीं सकती कि मैं कैसे करूं, और उन्होंने भी इंजॉय कर, वो जो बेचारे उस वक्त कंप्यूटर थे वो मेरी तरह फारिग ही थे, क्योंकि वो भी ऐसे ही थे कि रोज सुनते थे, इतना सुनते थे, अब हम कैसे सुने क्या करें। तो यकीन करें ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, इसको ग्रैब कर लें। अभी आपको अंदाजा नहीं है इसका, जब ये छूटती है ना फिर बंदा टूटता है। जिन दिनों में आपने कभी कोई विटामिन खाना शुरू किया होगा तो आप हर दिन एनर्जी फील करते होंगे, जब छोड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं एकदम ना छोड़ें। तो मैं आप तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ये कभी ना छूटे। आज एक एक कदम हमारा हिदायत की तरफ चल रहा है, अभी बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद ओनली वन स्टेप, तो इसको दौरे कुरान को अपना स्टेप वन समझे, कंप्लीशन नहीं है ये, तो अभी बिगनिंग ऑफ द एंड हुआ, अभी तो आपने शुरू की है चीज। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग इस रास्ते में आए आप उनको वार्म वेलकम के, चिड़े नहीं, बुराई ना करें। फिर इसी तरह देखिए कि जो कुरान को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, तो वही बात है कि आसान अहकाम को ले लिया, मुश्किल को छोड़ दिया। और जो कौम अपनी किताब के साथ ऐसे मामले करती है अल्लाह ताला उसको तोड़ के रखते हैं। किताब के हामिल जब कुरान के साथ ऐसा मामला करेंगे तो इसी तरह से अल्लाह ताला उनके साथ भी ये मामला करेगा। और यहाँ लफ्ज कुरान को भी आप देखें कि अल्लाह ने इसको कितने प्यार से यहाँ पेश किया, इसलिए फरमा दिया फस्त बिमा तुमर, बस आप हांके पुकारे कह दो, बस नबी जिस चीज का आपको हुक्म दिया जा रहा है इसे हांके पुकारे कह दो, और शिर्क करने वालों की जरा परवाह ना करो, इसको हाईलाइट करें, परवाह ना करें लोगों की, जो भी लोग कर रहे हैं आप अपने हक पे जमे रहे। ये थी वो आयतें जिसके बाद पे खुलेआम तबलीग भी शुरू हुई और आपने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। फरमाई इन्ना कफई ना कल मुख्तसीन, तुम्हारी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों के की खबर लेने के लिए काफी है, आपकी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी है। कौन अल्लज़ीना यजलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो लोग अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। वलकद नालमु अन्नक यदीक सद्रुक बिमा यकूलून, हाईलाइट कीजिए और अल्लाह के नबी की मोहब्बत महसूस कीजिए। हमें मालूम है जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है, इसका इलाज ये कि अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो, इसकी जनाब में सजदा बजा लाओ, और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। और वो कौन सी घड़ी है? वो कुरान, वो मौत की घड़ी है। यानी अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि आप मरते दम तक सजदों मेरे, नमाजों मेरे। तो बाज़ लोग कहते हैं हमारे बुजुर्गों को तो अब माफ हो गई है क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, सुलूक की जो मंजिलें तय करनी थी उन्होंने कर ली। नहीं, तो खुलासा क्या दिया पूरी सूरत के एंड पे कि जब पूरी उम्मत एक कुरान पे अमल करती है तो वो जुड़ी रहती है, और जब किताब के कुछ हिस्से बखरे होते हैं तो किसी ने एक टुकड़ा पढ़ा किसी ने दूसरा, तो उम्मत टूटती है। और जो मुकाम कोई कौम अपनी किताब को देती है वही मुकाम उनका दुनिया में बन जाता है। ऐसी टूटी फूटी कौम को जोड़ने के लिए अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आप जिंदगी के आखिरी लम्हों तक इस पैगाम को आम करते रहे। क्या वो पैगाम आज मेरे जरिए आम हो गया? क्या मैंने अल्लाह के नबियों वाला वो काम अपने जिम्मे लिया और इस जिम्मेदारी को महसूस किया? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इसको आसान करे। मौत पे सूरत हिजर का खत्म है तो क्यामत के आने पे सूरत नहल का शुरू है। दोनों का रब देखिएगा, हत्तयातियकल यकीन, फिर आपको मौत आएगी। तो मौत के बाद क्या है? अतअम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू, आ गया अल्लाह का हुक्म, अब इसके लिए जल्दी ना करो। सूरत नहल एक बड़े यूनिक अंदाज से शुरू होती है। थोड़ी सी बातें सूरत नहल पे देखिए, सूरत नहल का एक नया नाम सूरत नेम भी है, नेमतों वाली सूरत। और मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि सूरत नहल पढ़ते वक्त आपको क्या फील होगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए बड़े बड़े शीशे और थोड़ी थोड़ी देर बाद मंजर चेंज हो रहे हैं, कहीं बहुत खूबसूरत घास है और उस पर बकरियां चर रही हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो गाय दिखती हैं, कहीं घोड़े दिखते हैं, कहीं फिर बादल दिखते हैं। कभी आपने नॉर्दर्न इलाकों पे सफर किया हो तो आपको बहुत खूबसूरत सीन दिखेंगे। इतनी प्यारी इसमें झलकियां कायनात की कि सिर्फ पढ़ते हुए ही ऐसे लगता है कि हम सैर करके आ गए। बिल्कुल कभी आप आजमा लें, अब ये कोई वजीफा या टोटका नहीं है, अगर मानी पे गौर करें, अगर आपको समझ आए ना, कभी आपका दिल ना लग रहा, आप घर में आप बोर हैं, आप कहते हैं हाय कहीं चलूँ ना, बाहर चलें सैर करें, आप ना मियाँ साहब मान रहे हैं और अब्बू हैं तो अब्बू भी नहीं मानते, सूरह नाहल खोल के पढ़नी शुरू कर दें, बिल्कुल आपको ऐसे इमेजिन होगा कि आप गाड़ी में बैठे इन सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन ये सूरत हकीकत में अपने अंदर बहुत कुछ रखती है। टीम वर्क की बेहतरीन मिसालें, नखल कहते हैं मक्खी को, शहद की मक्खी जिसको हम नाक पे भी ना बैठने दें, कभी हाथ पे भी ना बैठने दें, आप इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे कि कुदरत का कितना बड़ा वो शाहकार है। तो मक्की दौर का आखिर है, अल्लाह ताला उसमें तफक्कुर की दावत देते हैं, गौर करो देखो। इस पूरी सूरत में तौहीद का इस बात भी है और शिर्क की नफी भी है और नशुक्री के रवैयों की बात भी है।